रेडियो प्लेबैक इंडिया और हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है बसंत त्रिपाठी की कहानी अंतिम चित्र।
बोलती कहानियां
ठीक आधी रात को सेल नंबर 3 से लोहे के जंगले को पीटने की आवाज से प्रहरी की नींद टूट गई। यदि जेलर साहब का विशेष हुक्म ना होता तो वो कान में रुई ठूंसकर सो गया होता, लेकिन उसे मजबूरन उठना पड़ा। नींद में लड़खड़ाता लहराता हुआ वो सेल नंबर 3 के सामने खड़ा हो गया। सेल के बाहर बिजली का बल्ब जल रहा था। उसकी बीमार पीली और टूटी टूटी सी रोशनी सेल के भीतर फैल गई थी। लोहे के जंगले की परछाई सेल की दीवारों पर छपी हुई थी, जिसके कारण सेल के भीतर एक और कैदखाने का आभास होता था।
क्या है?
झुंझलाते हुए तीखी आवाज में प्रहरी ने पूछा। सेल नंबर 3 के भीतर बंद कैदी नंबर 371 ने इशारे से चौक मांगा। एक तो नींद का नशा, दूसरा गूंगे से सामना। लानत है ऐसी स्पेशल ड्यूटी पर, प्रहरी ने एक भद्दी सी गाली दी और लौट आया। थोड़ी देर बाद उसने सेल के भीतर चौक के कुछ टुकड़े फेंके और फिर उसी पत्थर की बेंच पर लेट गया। कैदी नंबर 371 ने चौक के टुकड़े इस भाव से उठाए मानो संजीवनी बूटी हाथ लग गई हो। चौक को हाथ में लिए हुए वो थोड़ी देर तक सामने की दीवार को देखता रहा। ऊबड़ खाबड़ दीवार उसे दीवार नहीं बल्कि एक चुनौती लग रही थी। उसकी लाल लाल आंखों में स्वप्न का एक भीगा हुआ टुकड़ा तैरने लगा। रात गांव के बाहर से गुजरी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह धड़धड़ाती हुई जा रही थी, लेकिन कैदी ट्रेन के भीतर इत्मीनान से बैठे यात्री की तरह तल्लीन था। वो कोई 5-6 घंटे तक दीवार में खोया रहा, बिल्कुल कुशल तैराक की तरह जो नीले जल में उन्मुक्त तैर रहा हो। सुबह का एहसास सेंट्रल जेल के भीतर जाग रहा था। रात में सेल नंबर 3 की जो दीवार मटमैली और उबड़ खाबड़ थी, सुबह तक वो एक चित्र में बदल गई थी। चित्र में एक समुंदर था, उसके ऊपर से एक चिड़िया एक ही पंख से उड़ी जा रही थी। समंदर के किनारे हजारों लोगों का हुजूम खड़ा जान पड़ता था और सबसे पीछे एक चेहरा थोड़ा स्पष्ट था जो निश्चित ही किसी लड़की का था। सुबह से कुछ पहले प्रहरी की नींद की खुमारी टूट गई। वह चुपचाप सेल नंबर 3 के सामने खड़ा हो गया। कैदी को चित्र बनाते देखना उसके लिए अजीब किस्म का अनुभव था। बढ़े काले छितरे बाल, ऊंचा बलिष्ठ शरीर और बड़ा सा सिर, पूरा डील डॉल ही भयंकर था। लेकिन उसकी हथेली में चौक का टुकड़ा ऐसे लग रहा था जैसे कोई हत्यारा अपने मासूम बच्चे को प्यार कर रहा हो। प्रहरी के लिए पूरा दृश्य किसी जीवित चित्र से कम न था। कैदी ने जब अपना चित्र पूरा कर लिया तो प्रहरी ने कहा, नहा लो भाई, आज तुम्हें जाना है। कैदी मुस्कुराया। उसकी लाल लाल आंखों में चौक के लिए धन्यवाद के भाव झलक रहे थे। थोड़ी देर बाद मैजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर भी आ गए और कैदी नंबर 371 फांसी पर लटका दिया गया। कैदी की मौत के बाद एक गहरा सन्नाटा उस जेल में तैरने लगा। मौत के जलसे में शामिल सभी लोग एक दूसरे से बिना कुछ कहे थके मांदे लौट रहे थे। जेलर जेल के लंबे गलियारे से होता हुआ गुजर रहा था। वो चाहता तो नहीं था, लेकिन खुद को सेल नंबर 3 के आगे खड़ा पाया। जेलर देर तक दीवार में बने चित्र को निहारता रहा। दिवंगत खूनी चित्रकार का ये अंतिम चित्र था। जेलर ने प्रहरी को बुलाकर कहा, आज इस सेल में सफ़ेदी करवा देना। साहेब, कहें तो सामने वाली दीवार को ऐसे ही रहने दें। बेचारे का ये अंतिम चित्र है, प्रहरी ने कहा। जेलर प्रहरी को देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और उसने चित्र में से चिड़िया को पोंछ कर हटा दिया। प्रहरी कुछ देर जेलर साहब को जाते हुए देखता रहा, फिर उसने गर्दन फेर कर चित्र की ओर देखा। जहाँ कुछ देर पहले चिड़िया थी, वहाँ एक भद्दी घसीट से बना धब्बा दिखाई दे रहा था और भीड़ में खोई वह लड़की जो कुछ देर पहले उस चिड़िया की परवाज को उत्सुक आंखों से देख रही थी, अब बहुत भयभीत दिखाई दी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में नमी उभर आई। देखते देखते उसकी पलकों पर पनीली चमक दिखाई दी और फिर दो बूंदें उसकी आंखों से बाहर आईं और प्रहरी की विस्फारित आंखों ने उन सजीव आंसुओं को सचमुच दीवार पर लुढ़कते हुए देखा।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।